ओम शांति। इस भट्टी के पहले सत्र हम सुनेंगे अपने जीवन बनाने के लिए। हमारे सामने ब्रह्मा बाबा एग्जाम्पल है, तो अपने जीवन को ब्रह्मा बाप समान बनाने के लिए बेफिक्र बादशाह स्थिति कैसे बनानी है और बाबा के बेफिक्र बादशाह स्थिति कैसे थी उसके ऊपर प्रकाश डालेंगे। अभी हम सुनते हैं ब्रह्मा बाप समान बेफिक्र बादशाह की स्थिति कैसे बनाए।
ओम शांति। संगम युग पर हम सब भाग्यशाली बाबा के बच्चे, जिनके सब लोग मोबाइल बंद कर दो, नहीं तो मैं क्लास कराना बंद कर दूंगा। पहले सब अपना अपना मोबाइल स्विच ऑफ करो, क्योंकि साइलेंस में भी गीत बज जाता है, इसलिए इसको स्विच ऑफ कर दो, एक घंटे के लिए बंद कर दो, फिर भले ऑन कर ले। ओम शांति। हम सबके प्यारे बाबा कितनी उतराई चढ़ाई अनेक प्रकार के पेपर्स को पार करते हुए संपन्न और संपूर्ण बन गए। एक साधारण परिवार में एक बिजनेसमैन बाबा, जो अपने लौकिक जीवन के अंदर सबके दिलों पर राज्य करते थे, उनका व्यवहारिक जीवन इतना आदर्श था जो सभी बाबा के व्यक्तित्व को देखकर ही बहुत प्रभावित हो जाते थे। पूरे समाज में बाबा का बहुत सम्मान था, राजाओं महाराजाओं के साथ बिजनेस, हीरे जवाहरात का। बाबा की पर्सनैलिटी को देख करके राजाएं भी कहते थे कि शायद भगवान से भूल हो गई है, राजा मुझे बना दिया लेकिन बनाना आपको चाहिए। बहुत सम्मानजनक व्यक्तित्व, पूरे समाज में जिसका नाम, और अचानक से बाबा की प्रवेशता। उसके बाद बाबा के सामने जो परीक्षाएं आई, जिस प्रकार से विरोध शुरू हुए, उसका लंबा इतिहास आप सबने सुना होगा, मैं उस इतिहास की ओर अधिक नहीं जाऊंगा। लेकिन जो अपने थे वही पराए हो गए लौकिक में, जो बाबा को बहुत सम्मान देते थे, आगे रखते थे, वही लोग बाबा के खिलाफ होने लगे, क्योंकि नया ज्ञान, नई धारणाएं, जो लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि कलयुग के अंत में घर ग्रस्त में रहते हुए यंग युवक, बहने और भाई युवा काल में पवित्र जीवन व्यतीत करेंगे, छोटी छोटी उम्र की बहने और भाई जब पवित्र जीवन की प्रतिज्ञा लेकर के इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ने लगे, तो समाज ने, लोगों ने, संबंधियों ने बहुत विरोध किया। जो आज बाबा कह रहे थे मुरली के अंदर, पिता पुत्र, पत्नी पति, स्त्री पुरुष, सब एक दूसरे के दुश्मन बन जाते, वो बाबा ने उसी समय के दृश्य को याद किया कि अगर एक ज्ञान में चलता है दूसरा नहीं चलता, एक हंस है दूसरा बगुला है, एक ब्राह्मण है दूसरा शूद्र है, तो एक ही परिवार के अंदर टकराव की स्थिति बनती है, झगड़े हो जाते और सब समझते थे शायद दादा ही ये झगड़े करवा रहा है, क्योंकि शिव बाबा तो गुप्त, उसको तो कोई जानता ही नहीं। तो ब्रह्मा बाबा के ऊपर बहुत सारे कलंक लगे, लोगों ने बहुत अफवाहें भी फैलाई, यहां तक कहने लगे कि शायद बाबा कलकत्ता से कोई जादू सीख करके आ गया है और जिसको देखता है वही सतयुग में चला जाता है, श्री कृष्णपुरी में साक्षात्कार होने लगते। तो बाबा के ऊपर भी शक करने लगे और धारणाओं को देख करके कहां से बातें आई, किसने कही। बाबा को समझाने का लोगों ने बहुत प्रयास किया कि बाबा ज्ञान तो बड़ा ऊंचा है, लेकिन आप ये बात जो कहते हो इसको बंद कर दो, काम महाशत्रु कहना बंद कर दो, पवित्र जीवन की शिक्षा देना बंद कर दो, हम सब आपके बन जाएंगे। बाबा कह रहे हैं कि बच्चे मैं कभी नहीं कहता हूं, मैं तो खुद प्रवृत्ति वाला हूं, मैंने खुद ये सब अनुभव किए हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन वो कहने वाला कोई अलग है, वो कह के चला जाता, उसकी बात ये बच्चे मानते हैं। अब लोगों को कैसे पता चले वो कहने वाला कह के जाता है। तो बाबा का बहुत समाज में विरोध हुआ, बहुत केस हो गए, कोर्ट कचहरियां हो गई, लोगों ने इतना विरोध किया जो बाबा को खत्म करने के प्लान बना लिए। लेकिन इन सब परीक्षाओं के बीच में बाबा एकदम बेफिकर बादशाह, बेगमपुर का बादशाह, क्योंकि उसको संपूर्ण निश्चय था कि ये भगवान की लीला चल रही है, वो कुछ कराना चाहता है। संपूर्ण निश्चय होने के कारण निश्चिंत स्थिति थी। आज भी बाबा कह रहे थे जिसने जितना पहचाना है उतना बाबा का बना है, अगर पहचान में अंतर है, निश्चय में अंतर है, तो जितना पहचान पाया उतना उसने वर्षा लिया, अधिकार लिया। ब्रह्मा बाबा ने संपूर्ण रीति से शिव बाबा को पहचान लिया था, इसलिए कितना भी विरोध हुआ, कितनी भी परीक्षाएं आई, बच्चों से भी आई, समाज से भी आई, सब संबंधियों से भी आई, लेकिन बाबा बहुत अडिग, अचल, अडोल, एक रस और बिल्कुल बेफिकर बादशाह, जानता था ये करण करावनहार बाबा की प्रभु लीला चल रही है, वो करा रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, इसलिए मुझे कुछ नहीं हो सकता। सुना होगा आपने बाबा को एक बार चार सरदार लोग मारने के हिसाब से कोई ने कहा कि जाओ बाबा को खत्म करके आ जाओ, काम पूरा हो जाएगा। और वो जब वो लोग आए तो पहरा होता है, सिक्योरिटी होती है, तो बहनें ही पहरे पर थी, बहनों ने उनको रोक लिया कि तुम नहीं मिल सकते हो। तो वो जिद करने लगे कि मुझे तो बाबा से मिलना ही है, कुछ भी हो जाए। तो एक बहन बाबा के पास गई, बाबा को बोली, बड़े अलग प्रकार के लोग लगते हैं, बड़े गुस्से में हैं और बार बार कहते हैं मुझे बाबा से मिलना है, आपका दादा कहाँ बैठा है, मुझे मिलाओ। बाबा को पता चल गया कि ऐसे ऐसे लोग आए हैं। बाबा कहता कोई बात नहीं बच्चे, भले भेज दो, ले आओ। और बाबा अपनी गद्दी पर तपस्या में, योग में बैठ गया। जब वो लोग अंदर घुसे तो बाबा नहीं दिखाई दिया सामने, उनको गुरु नानक का साक्षात्कार हो गया। और जब देखा कि कौन बैठा, गुरु नानक साक्षात बैठा है, तो सब आकर के सिख तोते सब लेट गए। बाबा कहता बच्चे उठो उठो उठो, क्या हुआ? बाबा को नहीं पता क्या हो रहा है यहाँ, लेकिन वो आकर के देख रहे हैं ये कौन बैठा है सामने। माफी मांगने लगे, बाबा मेरे से भूल हो गई, मुझे तो ऐसे ऐसे लोगों ने पैसा देके कहा है कि मार के आ जाओ खत्म करके, और इसी लक्ष्य से हम आए थे, लेकिन आप तो साक्षात हमारे गुरु हैं, मुझे माफ कर दो। बाबा ने कही बच्चे कोई बात नहीं। बाबा ने बड़े प्यार से उनको टोली खिलाई, प्यार दिया और विदा किया। जरा भी बाबा को भय नहीं था, चिंता नहीं थी, दुख नहीं था। आजकल दुनिया के अंदर चिंता, भय और दुख का वातावरण बना हुआ है। हम सब बाबा के बच्चे बने, बाबा ने अपना बनाया, क्या हम इन तीनों बातों से मुक्त हैं? चिंताओं की टोकरी लेकर के तो नहीं चल रहे हैं? या इतना विश्वास है हमारा साथी, हमारा संरक्षक, हमारी छत्र छाया स्वयं भगवान है, वो निश्चय का बल है, संपूर्ण विश्वास है? चार बातों की अथॉरिटी बनना पड़ेगा बेफिक्र बनने के लिए। सबसे पहले निश्चय की अथॉरिटी बनो, निश्चय, संपूर्ण विश्वास स्वयं भगवान जो हम सबका पालनहार है, वो हमारा खेवैया है, वो इस नैया को पाल लेकर के जाने वाला है। भले कुछ भी होता है नीचे ऊपर, हलचल वातावरण में कोई बात हो भी जाए, लेकिन इसे पार होना ही है। परीक्षाएं, अगर कोई पेपर आते भी हैं तो क्लास आगे बढ़ाने के लिए आते हैं। इतना संपूर्ण निश्चय रख करके बात को बड़ा नहीं बनाना, कोई भी बात आ जाए उसमें बहुत धैर्यता के साथ, बहुत गंभीरता के साथ, बहुत अंतर्मुखी होकर के, तुरंत नहीं एक दूसरे से बात करने लगो, पूछने लगो अब क्या होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, लेकिन साइलेंस की शक्ति से धैर्य चित्त होकर के बाबा से बातें करो, उससे डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो, क्या करना है, हल दे देगा। हल मिलते ही आप निश्चिंत हो जाएंगे, लेकिन निश्चय कि हमारा साथी कौन है, संगम पर हमारा मार्गदर्शक कौन है, हमारा पालनहार कौन है, संपूर्ण विश्वास चाहिए। और साथ साथ कलप कलप के हम ही विजयी हैं, विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसमें भी पूरा निश्चय चाहिए। नहीं तो कई छोटी मोटी बातें उलझा देती हैं, मुझा देती हैं, किनारा करा देती हैं, अनेक चिंताओं की टोकरी सिर पर आ जाती है। कुछ भी हो, अगर निश्चय का फाउंडेशन मजबूत है और ये निश्चय है कि हम सत्यता की नाव में, सच की नैया में बैठे हुए हैं, सच की नैया कहते हैं हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, और सच्चाई के लिए कहते हैं सच्चा एक ऐसा दीपक है जिसको कोई भी बादल ढक नहीं सकता। सच्चाई सूर्य का काम करती है, कहते हैं सच तो बिट्ठो नच, हिंदी में कहावत है सच्चे हो तो डांस करो खुशी में। अगर सचमुच मैंने ये विश्वास है, ये निश्चय है कि मैं एक सत्य स्वरूप आत्मा हूं, सत्य पथ का राही हूं, सच्चा बाप हमारा साथी है, संरक्षक है, ये सत्य मंजिल हमको अपने ठिकाने पर ले जाएगी। ये सत्य रास्ता हमने पकड़ा है, झूठ नहीं है। किस चीज की चिंता, किस चीज का गम? डरते तो वो हैं जो अनिष्ट नहीं है, जिनके अंदर एक और बाहर दूसरा है वो भयभीत होते हैं। जिनके अंदर और बाहर बिल्कुल सच्चाई है, सफाई है, उनको डरने की, घबराने की, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई झूठा आरोप भी लगा दे, कोई हिसाब किताब होते हैं, झूठे आरोप भी लग जाते, कई बार ऐसे केस मैं देखता हूं, बड़े अच्छे खानदान के, अच्छी परिवार के अंदर, समाज के अंदर मान्यता, बाबा के बच्चे बनते हैं, बहुत निश्चिंत और निर्भय होकर के चलते, लेकिन कुछ एक सामाजिक तत्व ईर्ष्या के कारण उसको आगे बढ़ते हुए देख नहीं पाते, सहन नहीं कर पाते, उनके ऊपर झूठे आरोप लगा देते हैं। और झूठे आरोप में कई बार वो आत्मा फंस भी जाती है, हिल जाती है, क्या करूं, कैसे करूं, बाबा तो कहता मैं बैठा हूं लेकिन कहां साथ देता है, क्वेश्चन उठते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं प्रैक्टिकल की। एक बहुत नामी ग्रामी अपने बाबा का बच्चा है, डॉक्टर है, बहुत सुंदर सेंटर बना के दिया है, बहुत अच्छा उसका अपना डिस्पेंसरी चलता। उससे उसकी पहले युगल से उसने कईयों ने बहुत ईर्ष्या की, उसके ऊपर कुछ ऐसे तंत्र मंत्र कर दिए जो उसकी फोटो पर कोई अगरबत्ती लगाता था तो उसका वो शरीर वहां जलने लगता था, इतनी ईर्ष्या। कहने लगी मैं किसी तांत्रिक के पास नहीं जाऊंगी, किसी के पास नहीं जाऊंगी, मेरा डॉक्टर एक बाबा ही है, कुछ भी हो जाए मैंने तो बाबा को अपना बनाया है। ये ईर्ष्या के बस हो रहा है, वो भाग करके मधुबन आ गई। दादी को पता चला, दादी ने कहा कोई बात नहीं, तुम चिंता नहीं करो, बाबा बैठा है, हम लोग योग करेंगे। इतना बड़ा पेपर, इतनी बड़ी ईर्ष्या कोई कर रहा है, ऐसा भी तंत्र मंत्र होता है, हम लोग तो कभी सुना ही नहीं था। ईर्ष्या के कारण केवल एक जलन, दादी ने बाबा के कमरे में अखंड उसको बैठने की प्रेरणा दी, तुम जाओ बैठ जाओ, जाके देखें कौन अब क्या करता है और हम सब योग करेंगे। 12 घंटे के बाद उसकी सब प्रकार की प्रॉब्लम खत्म हो गई। 12 घंटा तपस्या जरूर करनी पड़ी। उसके बाद थोड़े दिन के बाद समाचार आया कि उस भाई को उसके ही भाई लोगों ने ईर्ष्या के बस उसको जेल की सजा करा दी। ये हमारी जलन होती ईर्ष्या के कारण, होते हिसाब किताब है पिछले जन्मों के। और बेचारे को ऐसी जेल हुई जो बेल भी नहीं मिल सकती थी। सबने सोचा इतना बाबा का अनन्य बच्चा, इतना यज्ञ में इसने किया, इतना सहयोगी, समर्पित परिवार, और फिर एक के बाद एक परीक्षाएं इसके ऊपर आ रही, क्या आया क्या। वो जेल में था, उसके पास बहुत अंदर से निराश हो गया। तो बाबा के बच्चे गए और बाबा को उस दिन मधुबन में आया था, मुरली चलाते चलाते बाबा ने एक बार उस बच्चे को शायद याद किया और कहा बच्चे दिल से कहो मेरा बाबा, बाबा हाजिर हो जाएगा। कोई ने बच्चों ने बाबा उसको सुनाया भाई को, तुम दिल से बाबा को, और कहते हैं उसने उसी प्यार से, उसी दिल से बाबा को जैसे कोई पुकारता है याद किया। कुछ ही घंटों के बाद ऊपर से, गवर्नमेंट के ऊपर से ऑफिसर से नोटिस आई कि उसको झूठा फंसाया गया, उसको अभी छोड़ दो, बेल की बात भी खत्म हो गई, उसको छोड़ दो, वो झूठे केस में फंसाया गया है। बाबा मदद जरूर करता है, लेकिन कई बार हमारे निश्चय की, हमारी सत्यता की परीक्षा होती है। इसलिए इन परीक्षाओं में डरना नहीं, कोई हिसाब किताब होते हैं पिछले जन्मों के और अचानक सामने आते हैं, वो हमारे फाउंडेशन को चेक करते हैं, हिलाने की कोशिश करते हैं। और समाज के अंदर ऐसी तो आग लगी हुई है, कोई आगे बढ़ेगा, कोई का बिजनेस अच्छा चलेगा, कोई के पास अच्छे साधन सुविधाएं होंगी, लोग जल जाएंगे। आज हमारी संस्था से कितने लोग अभी तक जलते हैं, जो आबू वाले हैं। अगर भूल चूक से आप मार्केट में चले जाओगे, जो पुराने पुराने हैं, जिन्होंने देखा है बाबा के घर को, बिगड़ी पार्ट को देखा है, वो इतना जलते हैं जो बात नहीं पूछो। भले कितना अच्छा वातावरण है, कितने अच्छे मददगार बने हैं, नई जनरेशन बहुत मदद कर रही है, लेकिन उस समय के जो बाबा के समय जिन्होंने बेगरी पार्ट में देखा है, वो कहते हैं इन बहनों ने कुछ अलग प्रकार का काम करके पैसा इकट्ठा किया है। कहां से इतना आ गया, कैसे आ गया, इतना जलते हैं जो बात मत पूछो। अगर कोई अज्ञान ऐसे अखबार वाला टीवी वाला पहुंच जाए तो बहुत सारी उल्टी उल्टी बातें संस्था के बारे में सुना देते हैं। एक बार रामदेव बाबा आए मधुबन में, और रामदेव बाबा को तो बहुत निश्चय था कि बहुत अच्छा ज्ञान है, सत्य ज्ञान है। तो वहां एक आर्य समाजियों का आश्रम, वो सन्यासी आदमी, उसने सोचा ये ब्रह्मा कुमारी आश्रम में तो आया हूं, चलो आर्य समाजी आश्रम में भी चलते हैं। तो वो अपने दो तीन भाइयों को साथ लिया, गाड़ी में बैठा और उस आर्य समाजी के संत गुरु के पास पहुंच गया जाके। और जाते ही उसने, आप ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आए हो, तुमको पता ये क्या है, बस देना गालियां शुरू कर दिया, गलानी करना। और रामदेव बाबा इतना उसको झाड़ दिया, कहता है तो किचड़ा उठाने वाला, गंदगी देखने वाला, यदि इन बहनों ने कितनी त्याग तपस्या की है, कितनी इनकी ऊंची धारणाएं हैं, ये तो देखो कहां से कहां पहुंच गई, और तुम 50 साल पहले से इसी कुटिया में बैठा हुआ है, एक आश्रम भी नहीं बना पाया। उसको इतना सुनाया अपने भाई बहनों के सामने ही कि तुम लोग अवगुण देखने वाले कभी आगे नहीं बढ़ सकते, ये तो पूरे विश्व में छा गई है, इनके इतने इतने बड़े बड़े आश्रम बन गए हैं, इनका त्याग देखो, इनकी तपस्या देखो, इनका ब्रह्मचर्य देखो, आप इनके गुण नहीं देख रहे हो, इनके अवगुणों को, किचड़े को देखते हो। ऐसी ऐसी बातें सुना करके उसको एकदम डाउन कर दिया, बेचारा चुप हो गया, कुछ नहीं बोला, एक शब्द भी नहीं बोला, और थोड़ा बहुत सुना के वापस आ गया। तो कहने का मतलब है, जब हम आगे बढ़ते हैं, जब सत्यता के मार्ग पर चलते हैं, तो कई नेगेटिव बोलने वाले भी होते हैं, पॉजिटिव करने वाले भी आ रहे हैं, लेकिन कभी भी किसी के कहे कहे सुनाए पर अपनी स्थिति को नहीं बिगाड़ना। अपनी जो निश्चिंत स्थिति है, बेफिक्र स्थिति बाबा ने बनाई है, कभी भी परवाह नहीं करना, ये लोग ऐसे बोलते हैं, ये लोग ऐसे बोलते हैं, यहां ऐसे होता। अगर हमने निश्चय के फाउंडेशन को, सत्यता के फाउंडेशन को और पवित्रता के फाउंडेशन को मजबूत किया है, ये मेन फाउंडेशन है, हिलाने वाला कुछ भी कहे, ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन हमारी जीवन अगर अगर पवित्र और योगी बनी है, तो इन सब भाई बहनों के जीवन इससे भी महान हो सकती है। क्यों हम अनुमान लगाएं, क्यों किसी की कहे सुने पर आए, उस फाउंडेशन को मजबूत करो और साथ साथ अनुभव की अथॉरिटी बनो। अनुभव अगर अनुभव है तो कोई कुछ भी कहेगा, अनुभवी को कोई हिला नहीं सकता, अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकता। अनुभवों को कोई भी कहे कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है, ये गलत है, वो गलत है, आप निश्चय से अथॉरिटी से कहेंगे नहीं हमको पता है। कोई कहे ये चीनी मीठी नहीं है, नमकीन है, आप कहोगे भाई नमकीन कैसे। कहते हैं एक बार एक चींटी, दो पहाड़ थे, एक नमक का पहाड़ था, एक चीनी का पहाड़ था। वो चींटी को किसी ने बोला ये चीनी का पहाड़ भी नमकीन होता है, बोला कैसे मानूं मैं, नमक के पहाड़ पर रहने वाली अपने मुंह में एक नमक का ढेला लेकर के मुंह में रख लिया और सारी चीनी के पहाड़ पर घूम के आई, बोलती है मैं देख के आई हूं वो भी नमकीन ही है, वो चीनी मीठी नहीं होती, किसने कहा मीठी होती है, मैं तो होके आई हूं। तो दूसरी ने कहा कि तुम्हारे मुंह में कुछ था तो नहीं, दिखाओ मुंह में क्या है तुम्हारे, तो उसमें तो नमक का ढेला रखा हुआ था, जिसके मुख में नमक था उसको चीनी का स्वाद कैसे आएगा। अगर सचमुच सत्यता का अनुभव करना है तो वो पवित्र जीवन खुद जीनी पड़ेगी, और अगर हम पवित्र जीवन जी रहे हैं, निश्चिंत जीवन जी रहे हैं, कोई कितना भी कहे कि ऐसी संस्था है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, कहेंगे नहीं आपको पता नहीं, आपने नमक रखा हुआ अपने मुंह में, आप अवगुण दृष्टि रखते हो, मुझे नहीं पता चलता है। तो बाबा अपने बच्चों को कहता है, बच्चे कोई भी परिस्थितियां, आज भी बाबा ने कहा एवर हैप्पी वही रह सकते हैं, एवर हैप्पी माना निश्चिंत, अगर चिंता है तो हैप्पी रह सकते हैं क्या, और एवर हैप्पी रहने के लिए चाहे शारीरिक पेपर आ जाए, चाहे प्रकृति का पेपर आ जाए, चाहे समाज का पेपर आ जाए, चाहे संबंधों का पेपर आ जाए, चाहे आर्थिक पेपर आ जाए, हर पेपर को बहुत सहज रीति से पार कर सकता है, एवर हैप्पी रह सकता है, क्योंकि उसको अनुभव है कि बाबा हमारी परीक्षा भले लेगा लेकिन पार भी लगा देगा। ब्रह्मा बाबा की कितनी परीक्षाएं हुई, कभी सोच भी नहीं सकते हो, जिस बाप ने अपने बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी से 14 साल तक पिस्ता बादाम खिलाया, कहते थे वो मंडली में तो पिस्ता बादाम खाते हैं सब, लेकिन वो परीक्षाएं आई जब आबू में आए हैं, जो कुछ था खा पी के खत्म किया, वहां कोई देने वाला नहीं, और क्यों हुआ था ऐसा शायद आपको मालूम, पुरानों को जिन लोगों ने बुलाया था, सिंधी लोग जो हमारी दादियों के दीदियों के परिवार वाले आ गए थे 47 में भाग करके, उन्होंने बहुत अनुरोध किया कि आप भारत में आके सेवा करो, लेकिन उनके दिल में एक खोट थी, जब भारत में आएंगे तो पता इनको चलेगा। बाबा भी ऊपर से जानता था कि परीक्षा आएगी, लेकिन बाबा का जो लास्ट गुरु था वो माउंट आबू में रहता था, थोड़ा आंखों से कम दिखता था, उसका नाम था गंगेश्वरानंद, और गंगेश्वरानंद का आश्रम अभी माउंट आबू में है। उसने बाबा को कहा, नहीं बाबा आपके लिए माउंट आबू बहुत उचित स्थान है, आप अपनी संस्था को यहाँ लेकर के आ जाओ। बाबा ने फिर बहनों को भेजा, जाओ देख करके आओ, देखा तो भरतपुर राजा की कोठी उनको पसंद आई, लेकिन आ तो गए, जो भी उनके पास चल संपत्ति थी, जो पैसा था, अचल संपत्ति को लाने की सब छुट्टी मिल गई, यहां तक भी कहते हैं जितना साबुन था, जितने पापड़ थे, जितना अनाज था, जितने कपड़े थे, जितनी अलमारियां थी, जितना फर्नीचर था, गाड़ियां थी, सब लाने की छुट्टी गवर्नमेंट ने दे दी, सब ले जाओ। लेकिन इतना किराया, स्टीमर का पूरा खर्चा, 400 लोग, उनका सामान और खुद, और स्टीमर के बाद ओखा बंदरगाह से आबू तक की ट्रेन, ट्रेन के बाद ऊपर तक आने के लिए बस, इतना किराया, इतना खर्चा, जो बाबा की जितनी चल संपत्ति बची हुई थी सब खत्म हो गई। और जिन्होंने कहा था हम मदद करेंगे, सहयोग देंगे, उन्होंने कहा अब परीक्षा ले, अब देखेंगे कैसे संस्था चलती है, एक पैसा नहीं देंगे। बाबा ने कहा मांगने से मरना भला, मांगना नहीं बच्चे, बाबा जानता है कि इसमें बहुत कुछ राज है, उसको इतना निश्चय है कि ये परीक्षाएं इस नैया को बहुत आगे बढ़ाने वाली हैं, तब बेफिक्र बात सर, अगर ये परीक्षाएं नहीं आती तो आज ये सेंटर नहीं खुलते, आज विश्व कल्याण का कार्य कैसे संभव होता। वो परीक्षाएं ही उनको सेवा करने की प्रेरणा दे रही थी। बाबा मुरली चला रहा था, बच्चे तुम तो विश्व कल्याणकारी हो, तुमको तो विश्व का महाराजा बनना है, क्या विश्व की आत्माओं की सेवा नहीं करोगे, बाबा के साथ ही बैठे रहोगे। अब बच्चे समझे मैं विश्व कल्याणकारी हूं तो यहां बैठ करके तपस्या करूंगी, विश्व कल्याण हो जाएगा। और तपस्या क्या करे, खाने के लिए नहीं रखा, कुछ भी नहीं, एक पैसा नहीं, एक दाना नहीं, चार आना नहीं। आपके परिवार में अगर दो चार बच्चे हों और खाने का पीने का प्रबंध न हो, कितनी चिंता हो जाएगी। और बाबा कहता था चलो बच्चे अभी पहाड़ों की सैर करके आते हैं, पिकनिक करके आते हैं। पिकनिक कुछ नहीं, घर में कुछ नहीं, और पहाड़ों पर गए, वहां जामुन खाया, करौंदा खाया, जो पहाड़ के फल थे वो खाया पिया, दो घंटा तीन घंटा सैर करके आ गए। और फिर बोला बच्चे अभी थक गए होंगे तो आज विश्राम कर लो, भोजन दोपहर को मिल जाएगा, नाश्ता हो गया। 11 बजे मनी आर्डर, 10:30 बजे मनी आर्डर पोस्ट में आता है या पैसा आता है लिफाफे के अंदर, राशन आता है 1 बजे बराबर, बेल बजती, किसी बच्चे को पता नहीं कि आज भंडारे में भोजन नहीं है, एक दिन का भी पता नहीं है, और भंडारे में भोजन बराबर बन रहा है, कहां से आता है कोई को पता नहीं। एक दिन भी भूखा नहीं सुलाया, लेकिन इतनी बड़ी परीक्षा को कैसे पार किया बाबा ने, वो बाबा जाने। कहता ना गुड़ जाने, गुड़ की गोत्री जाने, गुड़ जाने जिसमें गोत्री में रखा होता वो जाने मिठास क्या है। लेकिन उसमें भी बाबा एकदम, आप एक फोटो देखेंगे झरने के पास लेटा हुआ है ऐसे मस्त पके, कोई चिंता नहीं। बच्चे ये बाबा के बच्चे हैं, मेरे थोड़ी हैं। एक दिन बाबा ने मुरली चला दी, होली का त्योहार है, मुरली चलाते चलाते बोला बच्चे कल होली है, जलेबी का भोग लगेगा, जलेबी का भोग लगेगा। मुरली पूरी हो गई, बच्चियां दौड़ के आई, बच्ची भंडारी आई, बोली भंडारी बाबा आपने आज क्या बोल दिया, जलेबी का भोग, आपको पता है जलेबी के लिए क्या क्या चाहिए। क्या बच्ची? बाबा न मेरे पास मैदा है, न चीनी है, न तेल है, न कुछ है, और आप कहते हो जलेबी का भोग लगेगा कल। कैसे लगेगा? बाबा कहता बच्ची मैंने थोड़ी कहा, ऊपर वाला बोल के, ऊपर वाला बोल गया है, वो खिलाएगा, मुझे क्या पता। उसने अपने को छुड़ा लिया। कहता जब बाबा कहता है ना तो उसमें कुछ तो रहस्य होगा, कुछ तो राज होगा। चलो बच्चे कोई बात नहीं, होली हम बाबा के साथ मनाएंगे, 2 बजे आज उठेंगे हम सब, 2 बजे से वट उठ करके योग करेंगे। होली का दिन है, 2 बजे रात को लाइट जल गई, लाल लाइट, सब बहनें उठी और योग में बैठ गई। जो योग शुरू हुआ, गीत बजा, सामने एक बहुत विरोधी परिवार रहता था, सिंधी, माता की भावना थी, छिप छिप करके आती थी, उसका पति बाबा को देखते ही गाली देना शुरू कर देता था, सिंध का था, वहां से आया था, उसकी नींद फिट गई। और नींद फिटी तो उसने अपनी युगल को उठाया, कहता है आज इस दादा को क्या हो गया, होली के दिन इन बच्चियों को उठा दिया, योग करा रहा है और मेरे को पता नहीं क्या हो रहा है। कहता तेरे पास जो रखा है ले आ, अब मुझे तो नींद नहीं आ रही है, तुम देख अलमारी में क्या रखा है, जो रखा है ले जा, दादा को दे आ जा करके। कहती सवेरे दे आऊंगी। बोला नहीं, सवेरे तक मेरी बुद्धि बदल जाएगी, सवेरे तक बुद्धि बदल जाएगी, अब भी जा। कहते 2:30 बजे बेचारी को उसको अलमारी में जितना पैसा रखा था सब दे दिया उठा के, और वो लेकर के आई। बाबा बाहर पहुंची, दादियों ने बोला क्यों है इतने टाइम, बोला हमारे पति को पता नहीं क्या हो गया है, कहता मुझे नींद नहीं आ रही है, बाबा योग करा रहा है, कुछ है उसके अंदर, ये पैसा उसको दिया हो जाके। बाबा क्या नहीं कर सकता है, सवेरे सब आया, तेल आटा जो आना था, जलेबी का भोग लग गया, बाबा खिलाने वाला खिला दिया जलेबी। परीक्षाएं खूब आई, एक नहीं आई, एक से एक बढ़ के आई। आर्थिक रूप में तो इतनी बड़ी परीक्षा एक डेढ़ साल आई, शारीरिक रूप से इतनी आई, सब यंग थे, कराची में रहते थे, समुद्र के किनारे पर ठंडी का नाम नहीं था, एक के बाद गर्म कपड़े नहीं थे, आबू में आते इतनी ठंडी, इतनी बरसात, मई के बाद जून जुलाई में बरसातें शुरू हो जाती और उसमें सब के सब बीमार हो गए। और बीमारी में क्या संदेश आ रहा है, बच्चों को तो छाछ और ढोढे को 15 दिन खाना है, छाछ बुखार में, ठंडी में, कफ में, जो कच्चे थे सब हिल गए ऐसे ऐसे। ये क्या बाबा का संदेश है, ये संदेश ही थोड़ी है, ये तो झूठ बोलती है, छाछ कैसे खाएंगे। और बाबा मुस्करा रहा है ऊपर से, वो देखा परीक्षा ले रहा है बाबा। अभी जो पक्के निश्चय बुद्धि थे छाछ ढोढे से, उनकी सब बीमारी ठीक हो गई, खाया सबने, जो बाबा कह रहा है। जो कच्चे पक्के थे वो तो कहने मैं नहीं खाऊंगी, और बीमार पड़ गए, भूखा ही रह गए। तो बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं बाबा ने ली, लेकिन बहुत निश्चिंत स्थिति बाबा की। तो बेगमपुर का बादशाह कहता था, बच्चे ये सब बाबा के बच्चे हैं, उसके राज हैं, वो कुछ कराना चाहता इसलिए परीक्षाएं आ रही है, डरो नहीं, घबराओ नहीं, सब पार हो जाएंगे। जब धन की परीक्षा आई, बाबा कहता बच्चे अखबार में लिखो रिचेस्ट इन द वर्ल्ड ब्रह्मा कुमारी। ये क्या बाबा बोल रहे हो, चार आना घर में नहीं और रिचेस्ट इन द वर्ल्ड है, इतना बेफिक्र बादशाह हो सभी, घर में कुछ ना हो और कहो हम रिचेस्ट हैं सबसे। बाबा ने कहा, अरे बच्चे तेरे पास अविनाशी धन है, ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का, इतना धन भगवान ने दिया है, भगवान बाप है तुम्हारा, और तुम कहते मेरे पास कुछ नहीं है, जाओ इस धन का दान करो, धन दिए धन ना कुटे, जाओ इस धन को बांटो। बेचारों के पास चित्र थे, बहनों के पास ले ले करके, कहती मुझे क्या पता है लखनऊ कहाँ है, कानपुर कहाँ है, इलाहाबाद कहाँ है। और बाबा कहता जाओ बच्चे कुंभ मेले में जाओ, सेवा करके आओ। और अगर कोई बच्चे मना करते बाबा पता नहीं मुझे कहाँ है, तो बाबा कहते रे बच्चे अंधों ने मुल्तान ढूंढा, अंधों ने मुल्तान को ढूंढ लिया, तुम लखनऊ नहीं जा सकती है। ऐसे ऐसे मुरली चला देता था, सब डर के मारे चल देते थे, पहुंच जाते थे टाइम पर, पहुंच जाते थे। और ऐसे ही जो गवर्नर के सामने मिनिस्टर्स के आगे जाके बेधड़क बात करते थे, हमको मकान चाहिए, हमारे बाबा ने भेजा हमको, भगवान ने भेजा, निश्चय कितना, नशा कितना था। दादियों की अनुभव सुनो, उनसे बात करो, तो आपको पता चलेगा सचमुच कैसे इन्होंने सेवाओं का प्रारंभ किया, कितनी मेहनत, लोग क्या क्या बोलते थे, लेकिन इनकी जो धारणाएं थी, इनकी जो रूहानियत थी, इनका जो एकदम भोलापन था, पवित्रता की झलक थी चेहरे पर, उसको देख करके लोगों को अच्छे अनुभव होते थे। बोलना नहीं आता था, हिंदी भी बोलना नहीं आता था, लेकिन उनको देख करके ही लोग लगता था ये कोई ऊपर की उतरी हुई देवियां हैं, परियां हैं। दीदी आप यहाँ क्यों बैठी हो, आपको हम कोठी देते हैं ना, आप वहां सेवा करो, खुलने लगे सेंटर, दिल्ली में खुला, पंजाब में खुला, उसके बाद फिर यूपी में, लखनऊ में खुला, कानपुर में खुला। हम लोग जो शुरू शुरू में निकले, हमारे परिवार वाले 55 के बाद 3-4 साल ही सेवाएं हुई थी, संदेश मिलते मिलते पहुंच गया गांव में। कैसे उस समय बेगरी पार था और कैसे सेवाएं करते, त्याग तपस्या से। कहते हैं जो कुछ मिलता था, एक हंसी की बात सुनाता हूं, बहुत भोली बहन थी, सेंटर पर कोई इतना बड़ा तरबूजा लेके आ गया, तरबूजा होता ना, तरबूजे का रस मेरे को दिया भी, तो तरबूजा आया, वो कहती है मैं इतना अकेले कैसे खाऊंगी, बाबा के पास इतने बच्चे वहां बैठे हैं, मैं बाबा को भेज देती हूँ। अब वो तरबूजा बाबा को कैसे भेजे, उसको कुछ पता ही नहीं है। उसने उस पर चाकू से लिख दिया, ब्रह्मा कुमारी माउंट आबू राजस्थान, और लिख करके ट्रेन जो जा रही, बोला एक भाई को, बोला जो आबू में ट्रेन जा रही उसमें रख के आ जाओ। अब वो कहां रहती थी, यूपी साइड में सेंटर पर, और तरबूजा भाई के साथ भेज दिया, ट्रेन में रख दिया, किधर ट्रेन जा रही है, फिर भी वो ट्रेन में लुढ़कते लुढ़कते माउंट आबू पहुंच गया। बिना टिकट बाबा के पास आया कि बाबा कोई ने तरबूजा भेजा है। कहाँ से आया बच्ची? अच्छा उसी बच्चे ने भेजा होगा, वो भोली बच्ची है, उसको पता नहीं। लेकिन सच्चाई, सच्ची दिल से बाबा को मिलना चाहिए, बाबा खाए, बाबा के बच्चे खाएंगे। उसने इसी एड्रेस से भेज दिया और आ गया। कितनी ट्रेन बदली होगी, अभी तो ट्रेन डायरेक्ट है, उसमें तो ट्रेनें भी बदल गई होंगी, तीन चार जगह बदलते बदलते भी पहुंच गया करके। बच्चों का इतना बाबा से प्यार, यज्ञ से प्यार, सबसे जो कुछ मिलता था। जानकी दादी कहते एक बार ट्रेन तीन आ गए घी के, देसी घी के, कोई ले आया, मैं नहीं खाऊंगी घी, उठाया बाबा के पास भेज दिया। खुद आलू छोटे छोटे लेकर के दो टुकड़े किया, रसा बनाया, उसमें रोटी भिगोई, नमक डाला, बस खा लिया। इतना त्याग, इतनी तपस्या, लेकिन इतनी निश्चिंत बेफिक्र जीवन। हम विश्व के मालिक हैं, हम इस विश्व परिवर्तक हैं, इतना ऊंचा सम्मान। तो ब्रह्मा बाबा और दादियों को देखो, बेफिक्र स्थिति क्या होती है। बहुत परीक्षाएं आती हैं, आई हैं यज्ञ के ऊपर, हर प्रकार की परीक्षाएं आई, सरकार की तरफ से भी आई, समाज की तरफ से भी आई, परिवार की तरफ से भी आई, धन और आर्थिक रूप में भी आई, शरीर से भी आई। लेकिन सब परीक्षाओं में बिल्कुल बेफिक्र बादशाह, निश्चय है कि हमारे परीक्षा जो ले रहा वो भी हमारा बाबा है और हमको आगे बढ़ा देगा। तो इतनी निश्चिंत स्थिति, इतनी बेफिक्र स्थिति बनाई है कि ज्ञान ले रहे हो, सब ठीक है, क्या करूं, अभी ऐसा हो गया, अभी सरकार ने ये नियम बदल दिया, उसने ये कर दिया, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। बाबा के बच्चे, बाबा ने जवाबदारी आपके ली है, ली है, हाथ उठाओ जिसकी जवाबदारी बाबा ने ली है। कोई भी घड़ा बड़ा जो घर में बैठा होता है ना, कहते मैं बैठा हूं तो चिंता मत कर। अगर सचमुच आप बच्चे बन करके, बाबा के बच्चे बन करके सच्चा पोता मेल देते हो, जो कुछ है बाबा तेरा है, तो बाबा कहता अच्छा जो कुछ है तेरा है, सच्चे दिल से कहा है, तो जो बाबा का है वो तेरा है। लेकिन पहले तुमको कहना पड़ेगा सच्चाई से। अगर आपका एक संकल्प बाबा के पर उठ गया, तो बाबा हजार संकल्प से मदद करने के लिए बंध जाएगा। बाबा को अपने स्नेह की रस्सी में बांधने की बहुत अच्छी यही विधि है कि हम पहले बाबा के आगे ऑफर करें। ऑफर करो, ऑफरिंग मिल जाएगी, कभी भी कमी नहीं आती है। अगर कोई बच्चे बड़े दिल से कुछ करते हैं, आज हमारा यज्ञ कैसे चलता है, जो पुराने बच्चे हैं जानते हैं, दादियां कभी किसी से मांगती नहीं है, बहुत प्यार देती हैं, पालना देती हैं, और उसके रिटर्न में आज घर हमारा बाबा का भरपूर होता है। चाहे चावल है, चाहे गेहूं है, चाहे स्थूल चीजें, आप समझ सकते हो 30,000 का भंडारा चलता हो, तीन टाइम भोजन मिलता हो, सारे दिन में 90,000 का भोजन बनता है, 1,00,000 का हो गया लगभग, तीन टाइम भोजन होता है, एक टाइम भी कम नहीं होता है, चाय पानी टोली अलग है, आइसक्रीम तो जैसे लगता है जैसे फैक्ट्री के अंदर आए, चाहे तीनों जगह चले जाओ, 4-12 मास मिलती है। कितना दूध आता है मालूम है? पूरा ट्रक 2 बजे रात को एक जाता है ट्रक पालनपुर, और पालनपुर डेयरी से डायरेक्ट कैन भर करके आ जाता है दूध। पहले तो हम लोग गांव से लेते थे, ओरिया गांव था, साल गांव था, जिनसे हमने जमीनें ली ना, साल गांव की जमीन लिया, पीस पार्क लिया, ये सब जमीनें गांव वालों से, उन्हीं से ली जिनका दूध लेते थे पहले। लेकिन वो दूध इतना तो सप्लाई नहीं कर सकते बेचारे, 1-2 भैंसे होती, गाय होती, इसलिए अभी पूरा इतना बड़ा घर को चलाने के लिए दूध का पूरा ट्रक पालनपुर से आता है। हर चीज बाबा के बच्चे कैसे गुप्त रीति से मदद करके, एक कहते हैं एक हाथ से करो दूसरे हाथ को न पता चले, गुप्त सहयोग दे करके अपने तन का, मन का, धन का, चला रहे हैं यज्ञ को, निश्चिंत होकर के बाबा को दादियों को एकदम निश्चिंत, बाबा बैठा है कोई बात नहीं, बाबा मैं बैठा हूं ना, आपको मैं जो जरूरत है मैं पूरी करूंगा। एक भाई है, आपको मैं अपनी पर्सनल बात सुनाता हूं, मैं जब यज्ञ में आया तो बेगरी पार्ट थोड़ा ऐसा शुरू हुआ था, अच्छा नौकर नहीं थे, और मुझे जो ये ऑफिस का कारोबार मिला तो उसमें स्टेशनरी बहुत लगती थी, तो स्टेशनरी के लिए दादी कहती थी दिल्ली में बहुत सस्ता होता है और तुम जाओ दिल्ली की मार्केट से खरीद के ले आओ। मैं कम से कम 15 साल तक दिल्ली की सबसे सस्ती से सस्ती दुकान ढूंढता था, 4 आना कम मिले, चाहे वो दूसरी मंजिल पर हो चाहे तीसरी मंजिल में हो, हम अकेले एक भाई को साथ लेकर के जानकार को दिल्ली की हर मार्केट में जितनी नई सड़क पुरानी सड़क उधर की प्रसिद्ध है उन सब दुकानों से खरीद करके सब ले आते, कागज ले आते थे, स्टेशनरी का सामान, लिफाफे बहुत लगते, तो खरीद खरीद के लाते थे, और रिक्शे भी नहीं मिलते अंदर, वो कोई गाड़ी भी नहीं जा सकती, लॉरी भी नहीं जा सकती, इतनी पतली पतली गाड़ियां होती थी, सब सिर पर उठाते थे, मजदूर नहीं कर देते, क्यों उनको 1 रुपया दूं, बचत हो बस बचत चाहिए, और बचा बचा करके सब इकट्ठा करके यज्ञ में लाते थे। इतने साल तक बाबा की यज्ञ को बहुत इकोनॉमी से चलाया। एक दिन एक भाई देखता है, कहता है भाई जी आप लोग क्यों अभी धक्का खाते हो, अभी बड़ी उम्र हो रही, हम बैठे हैं हम कर लेंगे। हमने कहा अच्छा ठीक है आप करो, करने वाला आ रहा है करो। आज 8-10 साल हो गए हैं, एक पैसा वो नहीं लेता, हम कहते हैं ऑफर करते हैं 1 लाख 2 लाख 3 लाख की स्टेशनरी आती है 6 महीने में, आप कुछ तो ले लो। कहता है जब तक है तब तक नहीं चाहिए, मैं अपने आप भेजूंगा, आपको लिस्ट भेज दो। बाबा ने परीक्षा ली हम लोगों की, इकोनॉमी सिखाई, लेकिन आज हम देखते हैं बाबा के बच्चे खुद कोई न कोई ऐसे निमित्त बन जाते हैं जो यज्ञ को कहते हैं हम बैठे आप निश्चित हो जाओ। हम अगर बाबा के लिए कुछ भी करते हैं ना तो बाबा हमारी बहुत संभाल करता है, हर प्रकार का ख्याल रखता है, हम अपने आप को पहले सरेंडर करते हैं। बाबा के घर की अगर इकोनॉमी की है बचत की है तो बाबा उसको भरपूर करने के लिए बंधा हुआ है। तो इसलिए यज्ञ कैसे चलता है, बाबा कैसे चला रहा है करण करावनहार बन के, खुद निश्चिंत है और बच्चों को भी कहता है बच्चे तुम चिंता मत करो मैं बैठा सब अच्छा अच्छा होगा, लेकिन गफलत नहीं करना, गफलत करने वाले धोखा खा लेते। कभी भी कोई ऐसी बात ना हो जिसमें सच्चाई न हो, ईमानदारी न हो, सच्चाई एक प्रमाणिकता है, सच्चे रहो, जो कुछ है ईमानदारी से कर रहे हैं, ईमानदारी का खा रहे हैं, बाबा अपने आप रक्षा करता है मदद करता है। सत्यता की ना होने के कारण, कथनी और कहने में समान होने के कारण ब्रह्मा बाबा बहुत निश्चिंत रहे, कभी भी किसी पेपर से हिले नहीं डुले नहीं, और बहनों की संस्था बहनें जो शेरनियां बनी उसके पीछे बड़ा राज रहा, इनको जो बाबा ने आगे रखा उसके कारण यज्ञ बहुत सेफ रहा है, अभी भी सेफ है। इसलिए पांडवों को इस बात में बहुत नम्रचित बन करके उनको आगे रखने में ही सेफ्टी है, ये बाबा ने ही युक्ति रची। जब बाबा के ऊपर बहुत केस हो गए ना तो मम्मा ने बाबा को किनारे किया, बाबा आप कहीं नहीं जाएंगे मैं बैठी हूं। आज जो मम्मा की इतनी महिमा है, जो श्री लक्ष्मी का पद उसने पाया है, क्या किया होगा उसने यज्ञ में, कोर्ट केस हुए मम्मा ने, बाबा ने कहा हमने तो ओम मंडली को बना दिया ट्रस्ट, ओम मंडली के राधे है ओम राधे, वो जवाब देगी आपको, बाबा छूट गया। जब मम्मा पहले पहले कोर्ट में पहुंची, कोर्ट केस था, बहुत सारे लोगों ने किया था कि हमारी कन्याओं को भगा लिया, हमारी पत्नी को भगा ले गए, हमारी बहुत सारे केस थे, उल्टे सीधी बातें थी। कोर्ट में पहुंचते ही जज ने कहा ये गीता रखी थी तुम इस गीता पर हाथ रखो, हाथ रख दिया, बोला बोलो, गीता पर हाथ रख करके जो कुछ बोलूंगी भगवान को हाजिर नाजिर रख करके समझ करके सच बोलूंगी, तो बोलते जज साहब ये तो मैं नहीं बोलूंगी, भगवान को हाजिर नाजिर कैसे देखूं, हाजिर नाजिर तो आप मेरे सामने हो, मैं आपको हाजिर नाजिर समझ के जो कहूंगी वो सच कहूंगी। वो जज गरम हो गया, कहता कोर्ट का नियम है भगवान को हाजिर नाजिर समझो। कहता आप हमको दिखा दो कहां नाजिर हाजिर है तो बताओ मुझे, हमारी नजरों के सामने ले आओ। जब वो है ही नहीं तो मेरे से झूठी कसम आप क्यों उठवा रहे हो, और झूठी कसम उठवा के फिर सच बुलवाना चाहते हो। कोर्ट में बेचारे चुप हो गया जज, कहने लगा ठीक है आप जाइए यहां से। एक दो प्रश्न उल्टे सीधे पूछे उसने, मम्मा ने बहुत धड़ाके से जवाब दे दिया, और जवाब दे करके और केस डिसमिस हो गया। इतनी शेरनी शक्ति थी, इतनी एकदम निर्भय थी, निश्चिंत थी, क्योंकि सच्चाई में विजय है, सच्चे हैं तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इस बाबा के यज्ञ को मैं शुरू से देख रहा हूं, कैसे एकदम निश्चिंतता से बाबा चलाता है। अव्यक्त होने के बाद लोगों ने समझा बाबा तो चला गया, अभी कैसे यज्ञ चलेगा। बहुत सारी बातें, बहुत सारी नीचे ऊपर बातें आती है यज्ञ के ऊपर। एक बार एक दिन की बात है, अव्यक्त बाबा को बुलाया गया। कई केस कई बातें हो जाती चलते चलते, संस्था जब बढ़ती है ना, कोई कुछ कर लेता एक करता है, 100 पर दाग लगाते हैं। तालाब में कोई एक मछली मर जाती है तो पूरे पानी को गंदा कर देती है, ऐसा कहते हैं ना, एक मछली अगर मरती है तो सारे तालाब को गंदा कर देती है। ऐसे ही हमारी संस्था के अंदर अगर एक भी कोई गलत काम कर लेता है तो लोग समझते संस्था ही ऐसी है, अखबारों में आ जाएगा, टीवी पर आ जाएगा, उल्टी सुलटी बातें उठने लगेंगी, और जो कच्चे पक्के होते हैं, विशेष हमारी जो बांधेलिया होती बेचारी, उनके ऊपर बंधन आ जाते हैं, कच्चे पक्के टूट जाते हैं। तो ऐसे कई बातें उठ रही थी। एक बार बहुत सारा कभी कभी माहौल हो जाता है, कोई ने कुछ कर लिया होगा, कोई ने कुछ, तो बाबा को बुलाया गया कि बाबा को सुनाएंगे, बाबा से पूछेंगे क्या करना चाहिए ऐसे समय में। तो बाबा मधुबन वालों के बीच में आए, थोड़े से भाई बहने हम सामने बैठे थे, हम तो टाइप करते साथ साथ, कुछ भाई लिख रहे थे, कहीं टेप रिकॉर्ड भी भरे जा रहे थे। ओम शांति भवन में ही बाबा को बुलाया था, सेवादारियों को अलाउ नहीं था, केवल समर्पित भाई बैठे थे। तो थोड़ी देर बाबा ने मुरली चलाई और फिर अचानक देखा सबको ऐसे, और कहता है ये मेरी तरफ इशारा किया, टाइप बंद कर दो। टेप वाले को कहा ये टेप बंद कर दो, लिखने वालों का लिखना नहीं, सबको रोक दिया। तो पता नहीं क्या हो गया बाबा को, अचानक ऐसे बोला। फिर कहता है अच्छा अभी जो मुख्य भाई बहने हैं आओ स्टेज पर, कमेटी मीटिंग वाले सबको बुला लिया स्टेज पर। फिर पूछता है कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है। हलचल तो थी थोड़ी थोड़ी, कोई कोई बातें आती हैं पेपर की। तो दादी ने कुछ सुनाया, दूसरों ने कुछ सुनाया, सबने सुना लिया, सबका बाबा सुनता रहा, मुस्कुराता रहा। फिर एक सेकंड में ऐसे दृष्टि दी और कहता है, एक गीत सुना करके कहता है, सवेरे को कोई रोक सकता है, किसने रोका है आने वाले सवेरे को। सतयुग आना है ना, जब आना है तो फिर इन बातों की परवाह करनी है क्या, ये सब बातें तो होंगी ना छोटी मोटी। आज कहीं पर भी जाते हो, किसी ऊंची चढ़ाई पर जाते हो तो नीचे ऊपर खड्डे रास्ते नहीं आते हैं क्या, लेकिन जो पहुंचने वाला है वो तो पहुंच के छोड़ता है ना, इसलिए डरते क्यों, इन बातों को सोचते क्यों। निश्चिंत ऐसे बेफिक्र बादशाह बैठा था, देख करके ही बाबा की शक्ल से लगता था जैसे कुछ नहीं है। एक बार किसी ने एक सेंटर पर अचानक आग लग गई, किसी ने लगाई नीचे किराए के मकान में, चौथी मंजिल पर मकान था अपना, सेंटर बड़ा अच्छा, म्यूजियम था, वो जल गया, सारी बिल्डिंग चार मंजिल की जल गई। अब लोगों ने बड़ी आवाज किया कि बाबा का घर जल गया, बाबा कहता मैं रक्षा करता हूं, मैं मदद करता हूं, अब बाबा कहां इनका चला गया। बाबा के पास आई बात, बाबा बैठे थे, बाबा को सुनाया गया, बाबा ऐसे ऐसे हुआ, बाबा कहता बहुत अच्छा हुआ, मुस्कुराया, बोला बहुत अच्छा हुआ। तो सब देखने लगे बाबा की तरफ, बाबा ये नुकसान हुआ, सब लोग ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। तो बोला बच्चे अगर वो जलता नहीं तो हमारी दादी जो चार मंजिल तक चढ़ के जाती थी सीढ़ी, उसको नीचे का मकान नहीं मिलता। जला तो तुरंत इंश्योरेंस तो था ही, गवर्नमेंट को तरस भी आया और नियम अनुसार उसको ऊपर की बिल्डिंग वालों को नीचे मकान देना पड़ा। तो पहले तो दादी को नया मकान मिल गया नीचे का। दूसरा, ब्राह्मण परिवार में इतनी हलचल हुई, सबने सोचा दादी के सेंटर की फ्रिज जल गई, ये सारे नुकसान हो गया, धोबी की मशीन जल गई, उससे अच्छी अच्छी ला करके इतना सामान आ गया जो कई गुना आ गया, इंश्योरेंस पूरा मिल गया। कहते अच्छा नहीं हुआ तो क्या हुआ, पुराना गया नया आ गया। बच्चे तो थोड़ी बात में इतने हलचल में आ जाते हैं, क्यों क्या कैसे उलझ जाते हैं। और बाबा त्रिकालदर्शी है इसलिए बेफिक्र बादशाह है, बिल्कुल निश्चिंत है। तो आप लोग अगर त्रिकालदर्शी स्टेज पर रखो अपने आप को, कुछ भी बातें हलचल में लाएं, नथिंग न्यू, कलप कलप विजय हुई है होनी है, ये थोड़ी मोटी बातें आई है खत्म हो जाएंगे। लेकिन ज्ञान को यूज करो, ज्ञान का अच्छा चिंतन करके अपनी स्थिति को अडोल बनाओ। तुरंत कोई भी बात आई, कोई भी परीक्षा आई, उलझ नहीं जाओ, एकदम भड़क नहीं जाओ, उत्तेजित नहीं हो जाओ, उससे क्या होता सारी शक्तियां उसमें लग जाती हैं। उसी में हम अपनी उलझन को ठीक करने में अपनी शक्ति को नष्ट कर देते हैं। बात आई, पेपर आया, किसी भी प्रकार का आया, 5 मिनट 3 मिनट साइलेंस में चले जाओ, बाबा के कमरे में चले जाओ, एकदम शांत होकर के बाबा से पूछ लो, बाबा आप क्या करना है, आप तो हो ना हमारे साथ, आप कहते हो ना मैं मददगार हूं, अब मुझे बताओ मुझे क्या करना है। अगर बुद्धि शांत है, स्थिर है, साइलेंस में है, तो फौरन टचिंग आएगी, ये करो बच्चे, ये करो ये हो जाएगा, ऐसे कर लो ऐसे कर लो। ऐसा बाबा के साथ स्नेह का समीप संबंध जोड़ करके रखो जो बाबा आपको गाइड करता रहे। लेकिन अगर अधैर्य हो गए, बुद्धि में बहुत डिस्टर्बेंस आ गई, बहुत बुद्धि इधर उधर लगा दी, क्यों क्या कैसे की उलझन में चले गए, या उसी समय उठाया इस पुलिस वाले को फोन कर दूं, इस वकील को फोन कर दूं, इस जज को फोन कर दूं, वो मुझे मदद कर देगा, तो बाबा ऐसा करता है, मुस्कराता है, देखो मदद कर ले पहले, साक्षी हो जाता है, अलग हो जाता है। बच्चे को पहले मेरी याद नहीं है, बाद में याद आई, इसलिए बाबा भी बाद के लिए इंतजार करता है, करा लो तुम भाई बच्चों से। नियम यह है कि कोई भी बात आती है पहले बाबा याद है, बाबा करा देगा। जिस जज की जरूरत होगी, जिस वकील की जरूरत होगी, जिस पुलिस वाले की जरूरत होगी, बाबा अपने आप कराएगा ना, मैं उसके पास डायरेक्ट क्यों जा रहा हूं। आप डायरेक्ट जाओगे तो आपको बहुत सहन करना पड़ेगा, बहुत खर्चे भी करने पड़ेंगे, और कभी होगा कभी नहीं होगा। लेकिन आप बाबा के पास चले जाओ, बाबा को जिससे कराना होगा कराएगा। दादियों ने, बाबा ने, साकार ब्रह्मा बाबा ने ये नियम अपनाया, जो बाबा के पास गए, बाबा आपको जो कराना कराओ, और बाबा को जिससे कराना होगा अपने आप करा लेगा। हम डायरेक्ट उसके पास पहुंचने हैं कि भाई साहब हमारे भाई साहब इतने पहुंचे हुए हैं, इतनी उनकी पहुंच है, वहां तक जा सकते हैं, हम उनको फोन उठा के घुमा देंगे, लेकिन बाबा को नहीं कहेंगे, बाबा आप बैठे हो ना सर्वशक्तिमान, सर्व समर्थ, हजार भुजाओं वाले, आप हमारे साथी हो, फिर मैं इन देहधारियों के पीछे क्यों जाऊं, जिससे चाहिए आप करा दो। ऐसा पक्का सौदा करो बाबा से, निश्चिंत रहोगे, बेफिक्र बादशाह। और ब्रह्मा बाबा ने यही विधि अपनाई, कभी भी कोई बात आ गई, कहते एक बार मुरली चलाते चलाते बाबा के मुख से निकल गया, चाइना का युद्ध चल रहा था, चाइना वाला जब युद्ध चला ना 65 में, बाबा के मुख से मुरली में निकल गया, बच्चे अरे एक दो फुट जमीन के लिए क्यों खून खराबा करते हो, जिसको है दे दो, टुकड़े जमीन के टुकड़े के पीछे लड़ाई करने की क्या जरूरत है। मुरली में आ गया, मुरली उस समय सेंसर हो गई, गवर्नमेंट के हाथ में चली गई, और गवर्नमेंट के हाथ में चली फटाफट आया कि किसने बोला उसको अरेस्ट कर लो। अब वारंट आ गई, अब पता तो था ये बाबा की मुरली इनके यहां से आती है, ब्रह्मा कुमारियों की है। वारंट आई कि अरेस्ट करने का वारंट है, किसको अरेस्ट करेंगे? ब्रह्मा बाबा को, वही तो साकार में है। वो आ गई पुलिस, पुलिस वाले आए कि बाबा कहाँ है, तो बहने तो डर गई कि बाबा को कहीं जेल में ले जाएंगे, बदनामी हो जाएगी, क्या होगा ऐसा। तो बहने डरती रही डरती रही। बाबा कहता अरे बच्ची डरती क्यों, भेज दो ना बच्चों को। आए पुलिस वाले सामने आके बैठे, बाबा ये आपने बोला ऐसे ऐसे। बच्ची क्या बोला? बाबा आपने ऐसे बोला कि चाइना की लड़ाई के समय ये जमीन उनको दे दो। बोला बच्ची मुझे तो याद नहीं है, हो सकता है उसी बाबा इसमें आता ना वो बोला होगा। बाबा वो कहाँ रहता है, उससे मिलना मुझे। अरे बच्चे वो तो निराकार है, वो तो ऊपर रहता है परमधाम में, बाबा उससे कैसे मिलेंगे? बोला वो तो योग में बैठोगे ध्यान में मिलेगा। अब बाबा उसको ज्ञान देना शुरू कर दे। बेचारा कहता है अच्छा बाबा जब वो आए ना आप में तो उसको बोलना ये शब्द भी नहीं बोलो। हाँ बच्चे ठीक है बोल देंगे, काम पूरा हो गया। ऐसा बेफिक्र बात था बाबा था, इतना निश्चय था, इतना टूट विश्वास था कि वो बोलने वाला है, वो कहने वाला है, मैंने थोड़ी बीच में कहा। इसलिए बाबा कहता अगर कुछ नीचे पर होगा मैं सुधार लूंगा। शिव बाबा कहता ना मुरली के अंदर अगर ब्रह्मा ने कुछ गलत भी कह दिया और आपने कर लिया हो गया तो ऊपर वाला बैठा है वो सुधार लेगा। लेकिन आपको भी ये निश्चय हो कि वो हमारे साथ है। जैसे ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को अलग नहीं करता, कंबाइंड होकर के रहता, ऐसे ही संगम युग पर हम और बाबा कंबाइंड होकर के रहे। बस बाबा ये चाहता है। बाबा को अगर हम इतना कंबाइंड बना लें तो हर समय वो हमें गाइड करेगा, हर समय हमें मार्गदर्शन देगा, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। कोई भी बात होगी रोक देगा। मैं बताऊं आपको, मैं टाइप करता हूं ना कभी कभी, कोई ऐसी बातें टाइप करते करते कुछ हो जाए, टाइप गलत हो जाए, मैं देखता हूं वो टाइप राइटर रुक जाएगा, हैंग हो जाएगा, कंप्यूटर हैंग हो जाएगा, दोबारा इसको हमको करना पड़ेगा, वो करेक्ट हो जाएगा अगर अनकरेक्ट होगा तो। ये बुद्धि को ज्यादा यूज नहीं करता हूं। कोई कहता है बहुत अच्छा आप सेटिंग करते हो, ये करते हो, वो करते हो, मैं हंसता हूं, मैं क्या करता हूं। वो यूज करने वाला वो करा है, मैं सिर्फ सरेंडर जरूर हूं, अपनी बुद्धि को नहीं चलाता हूं, कराने वाला करा रहा है, उसका कार्य है, उसके बच्चे हैं, उसने उसको 10,000-10,00,000 लोगों की पालना करनी है, मुझे थोड़ी करनी है। हाँ ठीक है मुझे इंस्ट्रूमेंट बनाया है तो मैं अपना अच्छा इंस्ट्रूमेंट बन के रहूं, मैं अपनी मनमत परमत को इसमें ऐड ना करूं बस। ये अगर मेरी बुद्धि क्लीन है क्लियर है, बाबा को जो कराना है सही कराएगा, गलत नहीं होगा। इसलिए देखो कभी कभी जिस प्रकार की माहौल होता, जिस प्रकार के लोग होते वैसी मुरली चल जाती। लोग मेरे को ऑफरिंग करने आते, हमने भाई मेरे नहीं करो, ये दलाली मुझे नहीं चाहिए। उसका काम है, उसके बच्चे हैं, उसका यज्ञ है, उसकी पालना है। हम लोग तो बाबा के इंस्ट्रूमेंट हैं, हम समझते हैं बस हम राइट इंस्ट्रूमेंट बने। कभी भी मैं ना आ जाए, मैं करता हूं, मैंने किया, ये मैंपन बहुत बड़ा गुण है। गुण समझते हो? आपने बहुत बड़ा स्टॉक अगर जमा करके रखा है, चेक नहीं करते हो, और उसके अंदर अंदर घुन लग जाए, गेहूं हो चावल हो कोई आपकी दालियां हो, कीड़ा लग जाए घुन लग जाए, और फिर आप 6 महीने के बाद सोचो मेरे पास तो बहुत स्टॉक है, फिर खोल के देखो तो उसके अंदर कुछ नहीं, सब खोखला है। इस ब्राह्मण जीवन में कई समझते हैं हमने तो बहुत पुण्य कर लिए हैं, बहुत सेवाएं की हैं, बहुत तन दिया है, बहुत धन दिया है, बहुत अच्छे अच्छे कार्य में मैं मददगार हूं, लेकिन जो मैं का गुण है वो कई बार उसे स्टॉक को खाली कर रहा है। इसलिए ध्यान रखना, इस गुण को लगने नहीं देना। बाबा करावनहार है, वो करा रहा है, मैं उसका निमित्त हूं, बाबा आप भाग्य बना दो मेरा, जो करना है करा लो। इतना निमित्त भाव, तब निर्माणता आती है, और तब बाबा के कार्य में हम साथी बनते, और तब बाबा हमारा रक्षक और सहारा बनता है और हम निश्चिंत रहते हैं। तो ऐसे निश्चिंत जीवन जीनी है तो अपने आप को निमित्त समझना, कुछ भी मेरा नहीं है, न कुछ लेके आए थे न लेके जाएंगे। तो कहते थे ना, जब न लेके आए थे न लेके जाएंगे तो फिर जो है अगर नुकसान हो गया तो चिंता क्यों आती। मनुष्य चला गया, कोई कारण से आग लग गई, कोई कारण से कुछ भी हो गया, चोरी हो गई, कुछ हो गया, हाय 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 मेरा चला गया, मेरा चला गया, मेरा चला गया, मेरा था क्या? लेकिन हमने समझा कि हमने कमा कमा के बनाया ना, इसलिए मेरा है। बाबा कहता है इस मेरेपन ने इस सारे संसार को फेरे में लाया हुआ है। जितना फेरा चला है ना वो मेरेपन का फेरा है। कहते एक सेठ जी ने बहुत छोटे घर में रह करके छोटी दुकान से इतना झूठ सच बोल बोल करके खूब पैसा इकट्ठा किया, और पैसा इकट्ठा करके उन्होंने एक बहुत बड़ी कोठी बना दी 5-6 मंजिल की, और बस एक एक के नाम रखते गए, फलाने पोता आएगा, धोतरा आएगा, वो आएगा, उसके लिए कमरा होगा, इसमें ऐसा एसी होगा, इसमें ऐसा फर्नीचर होगा, इसमें ये होगा, खूब कमाते गए जिंदगी भर, कमा कमा करके बहुत सुंदर बिल्डिंग खड़ी कर दी। और जब बिल्डिंग खड़ी हो गई तो रोज खुश होते, वाह हमारी खून पसीने की कमाई से बिल्डिंग बनी है। एक दिन उसमें आग लग गई अचानक, शॉर्ट सर्किट हो गया। बच्चे दौड़ करके आए, बाबूजी बाबूजी वो बिल्डिंग जो आपने इतनी मेहनत से बनाई वो जल रही। अरे बच्चे उसमें जल रही, बस समाचार मिलते हो पटकने लगे, अब तो मेरी जिंदगी खराब, अब मुझे जीने का क्या हक है, मैंने सारी जिंदगी इसमें लगा दी, इतने गलत गलत काम करके मैंने पैसा कमाया, फिर भी मेरा सब मेरे सामने जा रहा है। कहते उनको बहुत जोर से बीपी बढ़ गया, हार्ट अटैक होने लगा, तड़पने लगे। उनका बच्चा बड़ा समझदार दौड़ के आया, कहता है बाबूजी क्या हुआ? अरे बेटा देख, मेरी सारी जिंदगी की कमाई मेरी आंखों के सामने जल रही है, अब मुझे जी करके क्या करना है। बेटा कहता है बाबूजी एक बात बोलूं, मैं आपको बताना भूल गया, मैंने तो 8-10 दिन पहले इसका सौदा कर दिया था, ये तो बिक गई, ये तो चेक मेरे हाथ में है, ये मेरी नहीं है, मेरी नहीं है। बस ठीक हो गया, मेरी नहीं है, बुलाने की जल रही है, जलने दो है? जलने दो, जल रही है बिल्डिंग, बनाई है हमने, लेकिन एक कागज का टुकड़ा देखा चेक का, मेरी नहीं है, उसकी है। आज केवल व्यक्ति केवल मेरा मेरा कह करके दुखी है, चिंतित है, अशांत है, न कुछ है मेरा न मेरा साथ जाएगा। ऐसा बाबा को अपने को समर्पित करो, जो कुछ बाबा है सब तेरा है, जीते जी सफल करो। कखपन जो है कखपन है, अगर जीते जी इंश्योर्ड कर दिया कुछ भी हो जाएगा, चाहे आग लगनी तो ही, चाहे समुद्र उछलेगा जाएगा, चाहे आग लग जलाएगी, चाहे गवर्नमेंट ले जाएगी, चाहे छापा मार के ले जाएंगे, चाहे कैसे भी ले, जाना तो सब है। अब जब जाना ही है तो क्यों ना हमारा जीते जी सफल हो जाए, इंश्योर्ड कर दो, कुछ काम में आ जाए बाबा के, चिंता नहीं होगी, बाबा बैठा है, बाबा अपने आप ले जाएगा और रिटर्न देने के लिए बंध जाएगा। तो भगवान को बांधने की ये बड़ी अच्छी युक्ति है, उस युक्ति से मुक्ति पा लो, ठीक है। बिल्कुल ब्रह्मा बाबा जैसा निश्चिंत बन के दिखाना, कोई चिंता नहीं, कोई गम नहीं, अव्यक्त रूप में मैं देखता हूँ बाबा बैठा है, हम सब निश्चिंत है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाबा 2 रोटी तो खिलाएगा सबको, उसकी गारंटी लिया है उसने, बाकी ज्यादा इच्छाएं होंगी तो इच्छाएं कभी अच्छा बनने नहीं देंगी, आवश्यकताएं पूरी करता इच्छाएं नहीं, आवश्यकताएं सब पूरी होंगी लेकिन इच्छाएं नहीं पूरी होंगी। बाबा के बच्चे इच्छा मात्र में विद्या बन करके बेफिकर बादशाह की स्थिति का अनुभव करो। ओके, ओम शांति।
धूप में कभी छाव बनकर लहरों में कभी नाव बनकर धूप में कभी छाव बनकर लहरों में कभी नाव बनकर लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ जब लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ मेरे बाबा है साथ 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 जब भी छाने लगे ये अंधेरा मेरे संग संग चले जो सवेरा जब भी छाने लगे ये अंधेरा मेरे संग संग चले जो सवेरा हर लम्हा दीप बन के जले जन्नत बनी हयात मेरे बाबा है साथ मेरे बाबा है साथ मेरे बाबा है साथ मेरे बाबा है साथ मेरे बाबा
कराची के दिनों से लेकर आज तक भी यज्ञ में बहुत सारे ऐसे बातें हैं, बहुत सारे ऐसे राज हैं, हम सब बच्चे जानना चाहते हैं। और किससे सुन सकते हैं भाई साहब के बजाय, हम सब आज भाग्यशाली हैं, बहुत सारे राज जान गए, है ना? लगता है ऐसे? तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपके अनुभवी शब्द जो है बहुत प्रेरणादायक रहा। बहुत बहुत धन्यवाद।